आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
पिछले कुछ सालों में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के बीच कई आर्थिक समझौते देखे गए हैं। आप जुड़े हुए हैं भव्या पांडे के साथ और आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक साझेदारी और व्यवसायों के नए अवसरों के बारे में। दरअसल हाल ही में सिडनी और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिजनेस केस स्टडीज का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया। आपको बताते चलूं कि ये एक ऐसी खास स्टडी है जो दिखाती है कि कैसे कंपनियां इस कोलैबोरेशन में प्रवेश कर रही हैं, अपना विस्तार कर रही हैं और सफल हो रही हैं। इस रिपोर्ट में 30 नई केस स्टडीज और कई इंटरव्यूज शामिल हैं। इस स्टडी के दौरान सामने आई कुछ दिलचस्प बातें आपको बताती हूँ। ECTA यानी ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट के बाद 70% कंपनियों ने तेजी से विकास और बेहतर व्यापार अवसर महसूस किए हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच व्यापार में 43% का इजाफा हुआ है, यानी 2024 में ये 39.1 बिलियन तक पहुंच गया। वहीं हर 1 मिलियन के इम्पोर्ट से करीब 6.2 नौकरियां पैदा होती हैं। इस रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि 92% कंपनियां अब ऑनशोर ऑफशोर हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल कर रही हैं। सरल भाषा में कहूँ तो ऑनशोर ऑफशोर हाइब्रिड मॉडल एक ऐसा व्यवसाय संचालन का तरीका है जिसमें कंपनियां अपनी गतिविधियों को दो जगहों में बांटती हैं, यानी अपने देश ऑनशोर और दूसरे देश ऑफशोर, ताकि बिजनेस को दोनों जगहों के फायदे मिल सकें। ये रिपोर्ट 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान देती है: व्यापार और बाजार तक की पहुँच यानी मार्केट एक्सेस, तकनीक और नवाचार यानी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, ऊर्जा संक्रमण यानी एनर्जी ट्रांजिशन और उन्नत निर्माण यानी एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। ये आंकड़े और केस स्टडीज दिखाती हैं कि ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी तेजी से 100 बिलियन के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में सरकारी, उद्योग और अकादमिक संस्थानों का सहयोग रहा है, जिससे 4 लाख से भी अधिक व्यवसायों को लाभ मिल रहा है। इस साझेदारी को गहराई से समझने के लिए आज हम कुछ सवाल करेंगे नताशा झा भास्कर के साथ, जो कि इस स्टडी की प्रोजेक्ट मैनेजर हैं।
थैंक यू वेरी मच भव्या फॉर द अपॉर्चुनिटी। देखिए, सबसे पहले आपके लिसनर्स के लिए एक क्विक स्नैपशॉट, क्योंकि आपने ये सवाल भी किया है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिजनेस केस स्टडीज कंपेंडियम का सेकेंड एडिशन एक लार्ज स्केल एविडेंस लेड इनिशिएटिव है, जो न्यूलैंड ग्लोबल ग्रुप और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है, उसकी कोलैबोरेशन से डेवलप हुआ है। इस एडिशन में हमने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की 30 ऑपरेटिंग कंपनीज को स्टडी किया है अक्रॉस 4 स्पेसिफिक थीम्स: ट्रेड एंड मार्केट एक्सेस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एनर्जी ट्रांजिशन और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। और कंपेंडियम सिर्फ इन कंपनीज की जर्नी को कवर नहीं करता है, बल्कि हर कंपनी के ऑपरेटिंग मॉडल्स, पार्टनरशिप्स, टैलेंट सिस्टम्स और कैपिटल डिप्लॉयमेंट की लेंथ से इनको एनालाइज किया गया है। अगर रिसर्च मेथड की बात की जाए तो ये रिपोर्ट 18 मंथ के स्ट्रक्चर्ड वर्क पर बेस्ड है, जिसमें हमने 33 क्रिटिकल बिजनेस क्वेश्चंस, प्राइमरी इंटरव्यू, सर्वेज, ऑपरेटिंग मेट्रिक्स को इस्तेमाल किया। साथ ही में, क्योंकि ये सेकेंड एडिशन है और पहला एडिशन 2023 में निकला था, जिसमें हमने 26 कंपनीज को कवर किया था, तो हमारे पास एक एडवांटेज था कि हम इसे कंपेयर करें कि 2023 से 2025 के बीच में क्या बदलाव आए कंपनीज की जर्नी में, कंपनीज के समझ में, उनके बिजनेस मॉडल्स में। तो एक लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस क्रिएट हुआ टोटल 56 कंपनियों का, क्योंकि 30 इस बार की कंपनी और 26 पिछले बार की, और हर केस स्टडी के साथ KPI स्नैपशॉट्स हैं, ताकि एग्जीक्यूशन की रियल जर्नी को समझा जा सके, ना सिर्फ इंटेंट को। अगर स्केल की बात करें इस कंपेंडियम की, तो ये कंपेंडियम 400,000 प्लस बिजनेसेस तक रीच करता है थ्रू अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम ऑफ आर 30 पार्टनर्स, विच आल्सो इंक्लूड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन कैनबरा, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन सिडनी, न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट, केमार्ट, HSBC, CBA, बिजनेस न्यू साउथ वेल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, RSM ऑस्ट्रेलिया, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, NASSCOM, Tech Council of Australia, Export Council of Australia, Advanced Manufacturing Growth Center, Smart Energy Council, to name a few. तो इसलिए मेरे हिसाब से ये कहना सही होगा कि यह सिर्फ एक कंपेंडियम या रिपोर्ट नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया कॉरिडोर को शेप करने वाली द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस लिटरेसी इनिशिएटिव है। अगर आपके सवाल पे जाएं, जो आपने कहा कि सेकेंड एडिशन की जरूरत क्यों पड़ी, पहले एडिशन में आपने क्या कैप्चर किया था और सेकेंड एडिशन की नीड क्या थी। देखिए, एक सिंपल रियलिटी है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया कॉरिडोर अब पोटेंशियल से परफॉर्मेंस फेज में आ गया है, खासकर तब जब हमने AI एक्टा अग्रीमेंट को एग्जीक्यूट किया है और साथ ही फुल फ्लेज्ड FTA को नेगोशिएट कर रहे हैं। फर्स्ट एडिशन ने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिया था कि कंपनीज कैसे मार्केट एंट्री करती हैं, कैसे पार्टनरशिप्स बनाती हैं या कैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया में स्केल करती हैं। इस बार का जो एडिशन है, ये इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है कि व्हाट वर्क्स से व्हाई इट वर्क्स, एंड इफ यू आर अ कंपनी व्हिच इज वांटिंग टू एक्सेस द इंडिया मार्केट और द ऑस्ट्रेलिया मार्केट, हाउ यू कैन रेप्लिकेट दैट। So categorically, we have focused on three specific things, which is, you know, which becomes very sharper in this particular edition. जहाँ पे operating models की बात की गई है कि कौन सा model आपके business के लिए अच्छा है, चाहे वो distribution हो, delivery हो, JV हो, सिर्फ partnerships हो, compliance पे ध्यान देना है, talent पे focus करना है, localization पे focus करना है, execution playbook क्या हो सकती है, कि सिर्फ story नहीं है, एक repeatable pattern है, partner strategy क्या होनी चाहिए, risk control क्या होना चाहिए, सेक्टोरल डेप्थ और इकोसिस्टम अवेलेबिलिटी। क्योंकि कई बार जब कंपनीज नए मार्केट में एंटर करती हैं तो उन्हें ये अंदाजा नहीं होता है कि आपके पास एक ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है जो एग्जिस्ट कर रहा है उस मार्केट में उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। अगर हम टेक एंड इनोवेशन की बात करें तो NASSCOM एक बहुत बड़ी बॉडी है जो इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इट इज देयर टू होल्ड योर हैंड एंड गाइड यू व्हाट रियली आर द इनिशिएटिव। सिमिलरली फॉर इंडियन टेक कंपनी व्हिच इज एंटरिंग द ऑस्ट्रेलियन मार्केट, Tech Council of Australia is a big institutional body there to, you know, guide you about the market. तो इसकी जानकारी ना होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हमने कैप्चर करने की कोशिश की है अपनी इकोसिस्टम पार्टनरशिप के थ्रू।
नताशा, हम बार बार ऑनशोर ऑफशोर हाइब्रिड ऑपरेटिंग मॉडल की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये जो मॉडल है ये इतना प्रभावी क्यों साबित हो रहा है और ये आखिर है क्या।
देखिए, हाइब्रिड मॉडल इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये रिस्क, कॉस्ट और स्केल तीनों को एक साथ सॉल्व करता है। तो अगर मैं डेटा की बात करूं, जैसे मैं पहले बता रही थी कि इस प्रोजेक्ट के दौरान हमें ये समझ में आया कि 80% से भी ज्यादा कंपनियां जिनको हमने कवर किया है हाइब्रिड डिलीवरी मॉडल्स यूज कर रही हैं और 92% ऑफ देम हैव जॉइंट ऑपरेशंस। नाउ ऑनशोर प्रेजेंस में ऑस्ट्रेलिया में आप देखिएगा ट्रस्ट है, कंप्लायंस है, क्लाइंट प्रॉक्सिमिटी, ये सारी चीजें ऑनशोर प्रेजेंस से आपको मिलती हैं। ऑफशोर कैपेबिलिटी में इंडिया से आपको टैलेंट मिल रहा है, टैलेंट डेप्थ है वहां पे, स्पीड है, कॉस्ट एफिशिएंसी है, जो ज्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज अनलॉक करती है। तो हाइब्रिड मॉडल का मैजिक ये है कि आपके पास फ्रंट एंड क्रेडिबिलिटी तो है ही, बट साथ में बैक एंड स्केल के साथ आप उसको एक ज्यादा पोटेंट वेपन बना सकते हैं। एंड इसमें समझने वाली बात यह है कि कंपनीज जो हाइब्रिड को ना रही हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल हैं क्योंकि उनका एक बहुत ही इंटेंशनली डिजाइंड ऑपरेटिंग मॉडल है जिसमें एडवोकेसी नहीं है। दे आर मोर कॉन्शियस अबाउट हाउ दे वांट टू प्लान द मार्केट, हाउ दे आर एक्सेसिंग द मार्केट इन अ मोर स्टेज्ड मैनर। सो नेट हाइब्रिड मॉडल कंपनीज को फास्टर स्केल देता है विदाउट लूजिंग लोकल क्रेडिबिलिटी, बिकॉज दे हैव लोकल क्रेडिबिलिटी, दे हैव लोकल ट्रस्ट, एंड साइमल्टेनियसली दे आर ऑल्सो स्केलिंग in a larger market.
नताशा, इस स्टडी के आधार पर आपसे पूछना चाहूंगी कि जो सफल कंपनियां हैं वो स्ट्रगलिंग कंपनीज के बीच में उनमें क्या अंतर है, मतलब ऐसा सक्सेसफुल कंपनीज क्या कर रही हैं ऑस्ट्रेलियन मार्केट में जो कि बाकी कंपनीज को भी करना जरूरी रहेगा आगे आने वाले समय में।
देखिए, डिफरेंस मेरे हिसाब से स्ट्रेटजी का नहीं होता है कि जो सफल कंपनीज है वो क्या कर रही है, इट्स लार्जली अबाउट ऑपरेशनल एंड एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन कि कौन सी कंपनी कितने डिसिप्लिन के साथ अपने स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर पा रही है। एक चीज जो रिपोर्ट में बार बार निकल के आई कि सक्सेसफुल कंपनीज अर्ली स्टेज पर ही बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी इन्वेस्टमेंट करती हैं, मार्केट एंट्री को बहुत फेज्ड रोड मैप की तरह देखती हैं जहां हर एक्शन काफी स्टेज्ड और प्लान्ड होता है, चाहे वो पायलट ट्रायल्स हो, लोकलाइजेशन हो या फिर स्केलिंग द कंपनी। यूजिंग डेटा अलॉट, एविडेंस पे उनका हर डिसीजन बेस्ड है, चाहे वो राइट प्राइसिंग हो, इफेक्टिव पार्टनरशिप्स हो, कैपिटल एलोकेशन हो इन डिसीजन के लिए। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो हर मार्केट, इट्स अ मार्केट ऑफ 28 डिफरेंट स्टेट्स, तो एक जैसी प्राइसिंग, पार्टनरशिप्स में अप्रोच, इट हैज टू बी वेरी कस्टमाइज्ड. तो जिन कंपनीज ने ये इनिशियल रिसर्च, इनिशियल मार्केट अपॉर्चुनिटी असेसमेंट बहुत डिलिजेंटली किया है, वो ज्यादा सक्सेसफुल है. दूसरी बात कि इस एडिशन में हर केस स्टडी के साथ हमने KPI स्नैपशॉट दिया है, जिसमें हमने कंपनीज की रेवेन्यू ट्रैजेक्टरी को भी बिल्ड किया है, कि जिसमें आपको ये पता चलेगा कि जब ये कंपनी की शुरुआत हुई तो स्टार्टिंग से लेके एक्सपैंडिंग इनटू दीज रिस्पेक्टिव मार्केट्स टू देयर फ्यूचर गोल्स, इन कंपनीज ने क्या अचीव किया है और इनकी ग्रोथ एस्पिरेशंस क्या है, कितने जॉब्स क्रिएट हुए हैं, कितने कैपिटल डिप्लॉय किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट क्या है, डिजिटल कैपेबिलिटी क्या है. तो ये दिखाता है कि सक्सेस किसी भी मार्केट में, चाहे वो इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो या कोई भी मार्केट हो, कोई ओवरनाइट स्टोरी नहीं होती है कि ये आपने सोचा कि आपको एक ट्रांजैक्शनल एक रिलेशनशिप आपने डेवलप कर ली और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, वो संभव नहीं है. और वो कैटेगोरिकली हर स्टोरी में बार बार निकल के आ रहा है, हर कंपनी की जर्नी को स्टडी करने पे निकल के आ रहा है. ये बहुत सारे कंपाउंडिंग डिसीजंस का रिजल्ट होता है और ये कंपेंडियम जहां पर 30 कंपनीज की जर्नी को हमने कैप्चर किया है, इसको क्लियरली रिफ्लेक्ट करती है. स्ट्रगलिंग कंपनीज अक्सर शॉर्ट टर्म विंस फेस करती हैं और सिस्टम बिल्ड नहीं करती हैं, जहां पर मुझे लगता है कि एक स्ट्रगल होता है. कुछ रेकरिंग मिस्टेक्स जो इस डेटा ने बार बार दिखाया है कि इंडिया या ऑस्ट्रेलिया को आप एक मोनोलिथ ना समझें. आपके पास स्टेट क्लैरिटी होनी चाहिए, सेक्टोरल क्लैरिटी होनी चाहिए. आप बायर की मेच्योरिटी को इग्नोर मत करिए. पार्टनर के सिलेक्शन के लिए कोई शॉर्टकट मत लीजिए. गवर्नेंस पे बहुत काम करिए. टैलेंट सिस्टम को इंटीग्रेट करिए, लोकलाइज करिए. कंप्लायंस, प्रोक्योरमेंट साइकिल्स, डिजिटल कैपेबिलिटी, इन सब पे आपको ध्यान देना होगा. तो इट के नॉट बी एन ओवरनाइट एक्शन. यू हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस ऑन हाउ यू आर अप्रोचिंग दिस मार्केट. यू आर कैटेगोरिकली बिल्डिंग दोज पायलट ट्रायल्स एज यू एंटर दीज मार्केट्स.
तो आखिर व्यवसायों या वेंचर्स को इस साझेदारी से क्या फायदा हो रहा है, ये समझने के लिए हम जुड़े राकेश प्रभाकर के साथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जोहो के कंट्री हेड हैं. आपको बता दूं कि जोहो एक व्यापक क्लाउड आधारित बिजनेस सॉफ्टवेयर सूट है, जिसमें 45 से अधिक एप्लीकेशंस शामिल हैं. ये सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR और कोलैबोरेशंस के लिए टूल्स प्रदान करता है, जिससे सभी आकार के व्यवसाय अपनी डे टू डे एक्टिविटीज यानी दैनिक गतिविधियां सुचारू रूप से चला सके. ग्राहकों का प्रबंधन, जिसे हम तकनीकी भाषा में CRM भी कहते हैं, वो कर सके और स्टैंडर्डाइज्ड वर्कफ्लो के माध्यम से उत्पादकता बढ़ा सके. आपको बता दूं कि जोहो के प्रमुख उत्पादों में जोहो CRM, जोहो मेल, जोहो बुक्स और जोहो डेस्क शामिल है. साथ ही एनालिटिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और लो कोड ऐप डेवलपमेंट जैसे विशेष टूल्स भी यहाँ उपलब्ध हैं. ये सभी सेवाएं जोहो वन जैसे प्लेटफॉर्म्स के अंतर्गत एकीकृत रूप से प्रदान की जाती हैं.
I'm Rakesh Prabhakar. I head the business for Zoho Australia. I am employed at Zoho Corporation. We are a cloud-based business software developer. We have 50-plus applications. Our top applications are CRM, Help Desk, an accounting software called Books. We also have Zoho One, which we call it an operating system for your business. Mm-hmm. So if you have a business, most probably you could use it. If you need a tech solution for your business, Zoho One would be the right fit for you.
Rakesh, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो रिपोर्ट है, ये आपकी कंपनी की ऑस्ट्रेलिया इंडिया कॉरिडोर में जर्नी कितनी सटीक रूप से दर्शाती है?
Sure. You know, when the team at Newland Global, Deepen and Natasha reached out to me and asked me to be a part of the compendium, I was intrigued. And I was happy to share my story, as in how Zoho Australia, grew, what problems we had, and how we solved those problems. And the interesting bit for me was, when I shared my story, I wanted it to help out other businesses when they enter Australia as a market. Because when it would have really helped me had I read somebody else's journey, what challenges they had, what pitfalls they had, and how they overcame that. So. I believe the compendium is a true reflection of what Zoho Australia underwent during the initial year. And that accuracy is captured really well by Natasha and team.
ऑस्ट्रेलिया इंडिया मार्केट में प्रवेश यानी एंट्री या विस्तार करते समय आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया था?
When we started, so we set up our data centers in Australia in 2019. And Then we started setting up a local team in 2022. Right, that was when there was, you know, the great resignation, the wave of resignations, not enough talent pool. Hiring local talent was extremely difficult, and this was accentuated by the need of us having to build a very strong core team, because we wanted to ensure that the core team that we have in Australia is solid, wherein they can go ahead and we could rely on them to build larger teams, right? Mm-hmm. So because of which it was extremely hard to find the right resources in terms of skill set, in terms of attitude, and in the right place, right? So this was a challenge, and once we were able to overcome that, the other challenges of, you know, building a brand, building a partner network, all of that fell in place. So the biggest challenge for us was building the core team and going after the right talent.
राकेश, क्योंकि आप एक ऐसे वेंचर में काम करते हैं जिसकी हर जगह आजकल बात चल रही है, यानी एआई और टेक्नोलॉजी, ऐसे में आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी पॉलिसीज या स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो आपकी जैसी कंपनियों को दोनों देशों में तेजी से विस्तार करने में और मदद कर सकती हैं?
With ECTA in place, you know, it has opened up trade between the two countries, bilateral trade, bilateral talks, relationships have gone from strength to strength. So this has definitely helped. In terms of what else we could probably look for as an organization which operates both in both countries, I'd say it should be easier for us on both ends to be able to conduct business. So travel should be easier, visa processing should be easier, as well as access to talent. You know, talent should be able to freely flow from Australia to India and the way back. One example that I see is Australia has world-class educational institutions, and India has an enormous, you know, population which can consume the content that's put out by these educational institutions.
जहां ऐसी case studies व्यवसायों को एक दिशा देने में मदद कर रही है, हमने नताशा से एक सवाल पूछा।
कई तरह के द्विपक्षीय समझौते हाल ही में हुए हैं, चाहे वो ट्रेड के संदर्भ में हो या हमने देखा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी है, लेकिन इसके अलावा और क्या पॉलिसी या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए जो कि इस तरह के स्टडीज को, इस तरह के प्रोग्राम्स को और गति दे सके?
That's a great question, Bhavya, and thank you very much. I think बहुत सारे स्टेप्स हमारे सरकार ने ऑलरेडी लिए हैं, और खासकर जो ये जो नतीजा या ये रिजल्ट जो हम कंपेटिटिव में देख रहे हैं वो इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सिंस 2020 जब से हमने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया, वी हैव सीन अ न्यू एलिवेशन इन द बायलेटरल टाइम्स। नाउ द फोकस इज कि हम इसको कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं। आपने जैसे कहा कि हम ऑलरेडी एक फुल फ्लेज्ड ट्रेड अग्रीमेंट अभी नेगोशिएट कर रहे हैं, स्पीका के नेगोशिएशन अभी चल रहे हैं, बट साथ ही जो हमें सेक्टोरल रिफॉर्म्स पे भी फोकस करना पड़ेगा, और खासकर सीका के तहत हम कैसे स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशन अलाइनमेंट और ला सकते हैं ताकि कंपनीज जो जब इन मार्केट्स में जाती हैं तो उनको जिन सेक्टोरल स्पेसिफिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनको कैसे एड्रेस किया जाए, चाहे वो टैलेंट मोबिलिटी या स्किल पाथवेज हो, चाहे वो डिजिटाइज ट्रेड फैसिलिटेशन, चाहे वो कस्टम्स प्रोसीजर्स हो, चाहे वो एक्सेसिंग मार्केट थ्रू स्पेसिफिक सेक्टर्स हो, उसमें कैसे हम चीजों को आसान बना सकते हैं। तो हाउ डू वी सिंप्लीफाई डूइंग बिजनेस फॉर आर कंपनीज दैट आर एंटरिंग दीज मार्केट्स, दैट विल एक्चुअली डिफाइन हाउ वी विल टेक द ऑस्ट्रेलिया इंडिया बायलेटरल इकोनॉमिक कॉरिडोर टू द नेक्स्ट लेवल। और इसे मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि इस रिपोर्ट में हमने एक ट्रेड मैट्रिक्स भी डेवलप किया है जिसमें हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि कहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज सिट करती हैं। तो जहाँ पे डिमांड ऑलरेडी एक्सेलरेट हो रही है, कहाँ पे हमारी कैपेबिलिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और नेक्स्ट डेकेड का फ्रंटियर कहाँ ओपन हो रहा है। तो बिग पिक्चर ये है कि कॉरिडोर अब, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंडिया की जब भी हम बात करते हैं तो हम कमोडिटीज की बात करते हैं, वो अब कमोडिटीज से मूव कर रहा है। ऐसा नहीं कमोडिटीज नहीं, दैट विल रिमेन एन एंकर सेगमेंट ऑफ दिस बायलेटरल रिलेशनशिप, लेकिन वी आर ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स हायर वैल्यू टेक्नोलॉजी एनेबल्ड and knowledge intensive sectors, जहाँ दोनों countries की strengths अब naturally converge कर रही हैं। तो overall अब ये bilateral story सिर्फ potential की story नहीं है, ये execution का game है, और जो companies capability, governance और operating discipline पर invest करेंगी वही $100 billion opportunity को actually capture कर पाएंगी।
SBS न्यूज के लिए इस खबर को आप सबके सामने SBS हिंदी में लेकर आई भव्या पांडे।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।